તારીખ 22/9/1997 શ્રી સમયસર ગાથા 86 અને 83 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 38
गाथा के विषय में प्रश्न उठाया है और प्रश्न करता है कि मिथ्या तो आदि को मिथ्या तो आदि को जीव और अजीव कहा है तो वे मिथ्या तो आदि और अजीव मिथ्या जीव मिथ्या आदि और अजीव मिथ्या आदि कौन है उसका उत्तर कहते हैं
जी
क्या है जीव के जितने भी विभाव परिणाम है उसका जो प्रकार है उस प्रकार से कर्म वर्ग में से जितने भी कर्म जीव के साथ संबंध पाते हैं बंध को प्राप्त करते हैं उनका नाम दिया जाता है। पहले सब कारण वर्णना में कर्म सामान्य रूप थे जीव के विभाव परिणाम को निमित्त पाकर के उसमें से कुछ एक परमाणु का समूह जीव के साथ संबंध करता उसमें अनेक प्रकार होते हैं। जीव के भाव के जो प्रकार है उसका नाम दिया जाता है कर्म प्रकृति को। जैसे क्रोध भाव से निमित्त से क्रोध भाव के निमित्त से जो कर्म प्रकृति का बंध हुआ वो क्रोध प्रकृति हुई
जी
तो क्या हुआ कि जितने जितने प्रकार के जीव के विभाव है उतने उतने प्रकार के कर्म परमाणु में प्रकृतियां हैं। यहाँ मिथ्यात्व अज्ञान और अभिव्यक्ति ये तीन गया है 88 गाथा में मिथ्यात्व अज्ञान और अभिव्यक्ति ये तीन अजीव में उद्गल कर्म भी है और ये तीन जीव में ये जीव के विभाव भी है
जी।
तो दोनों में क्यों ऐसा स्पष्टीकरण दिया है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्मों में विभाव है जीव में तो विभाव है ही नहीं। जितना भी विभाव भाव है वो तो कर्म का है जीव तो एकांत शुद्ध है। तो कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जीव विभाव करता है बाद में कर्म की व्यवस्था हम कुछ नहीं समझते। ऐसे भी धर्म के संप्रदाय अलग अलग प्रकार से चलते हैं। इसका स्पष्टीकरण है कि कर्म का विषय जो है इतना सूक्ष्म है सर्वस्व के प्रत्यक्ष ज्ञान से गोचर नहीं होता। सर्वज्ञ परमात्मा ने सब देखा दिव्य धन्यवाद मैं वो बात कही और आगे उन्होंने वो बात आई। तो कहते हैं पोगल कर्म मिथ्यम योगो अविधि अन्नानो अज्ञेयो पोगो वो अन्नानो अविधि मिथ्यम च योगो योग समृति और ज्ञान अजीब है जो विख्यात योग अविरति और ज्ञान अजीव है वो तो पुद्गल कर्म है। ये पुद्गल परमाणु की पर्याय है विभिन्न प्रकार के। और वो अज्ञान अविरति मिथ्यात्व जीव है वो जीव का उपयोग है माने जीव का इस प्रकार का परिणाम है। उपयोग माने विभाव परिणाम है ऐसा लेना है। ठीक है। निश्चय से जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति इत्यादि अधीन है ये तो अमूर्तिक चैतन्य परिणाम से अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है
जी।
इस कर्म परमाणु में विभिन्न प्रकृतियां पैदा होती है
जी।
उसमें जीव का परिणाम का अभाव है तो अन्य है इससे जुदाई है। और जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अवृत्ति आदि जीव है वे मूर्ति पुद्गल कर्म से अन्य ऐसे चैतन्य परिणाम के विकार है जो उपयोग कहा है जिसका स्पष्टीकरण दिया टीकाकाराचार्य महाराज ने कि चैतन्य जीव का जो चैतन्य स्वरूप है उसमें विकार होता है परिणाम में उस मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं मिथ्या दर्शन अज्ञान और अवृत्ति। मन जीव के तीन मुख्य गुण हैं अनंत गुण में तीन गुण मुख्य है
जी
प्रधान ज्ञान और चारित्र। जब वो विकृत रूप परिणमते हैं तो एक साथ विकृत रूप परिणमते हैं
तीनों
और संसार इससे संसार का परिभ्रमण चलता रहता है
जी।
वही तीन गुण जब सम्यक होकर के आत्माभिमुख होकर के शुद्ध परिणमन करने लगता है तो संसार से उठ करके जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये तीन गुण पर बंध मोक्ष की व्यवस्था भगवान ने बताई है। मुमुक्षुता में भी ये तीनों गुणों में फर्क होना चाहिए। मिथ्यात्व में मंदता होती है शक्ति की अनुभाव की बाकी एक साथ पलटता है मिथ्यात्व बन करके सम्यक हो जाता है। चारित्र में कषाय रस मंद पड़ता है
जी।
और मति सुत ज्ञान में निर्बलता आती है तो विवेक को प्राप्त करता है कि मेरा हित अहित कहाँ होता है कैसे होता है मुझे किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए ये सब की भूमिका में ज्ञान का विवेक होता है।
तो ज्ञान का विवेक चारित्र गुण की शुद्धता से होता है
दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों हैं वो एक दूसरे के पूरक है। किसी अवस्था में चारित्र का असर ज्ञान पर आता है किसी अवस्था में ज्ञान का असर चारित्र पर आता है। जैसे कि निगोद में जीव है वहाँ ज्ञान विवेक करने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं हुआ तब से ज्ञान का विवेक छूट गया है
जी।
संगने प्राणी ही विवेक कर सकता है मैंने हित अहित का विचार जब मन मिला संगने हुआ और वो संगेपना का सदुपयोग नहीं किया जीव ने तो कुदरत ने वो व्यवस्था छीन ली असंग हो गया क्योंकि अपने हित के विषय में उसने दरकार नहीं की तो असंग हो गया। तो जितने भी असंग प्राणी हैं उसको देख करके ये बोध होना चाहिए सन्नी जीव को कि अगर मैं इस अवस्था का सदुपयोग करके मेरी आत्मा की उन्नति नहीं करूँगा तो मेरा मन हो चला जाएगा मैं मन बिना का प्राणी हो जाऊँगा। ऐसी अवस्थाओं में ज्ञान का कोई मुख्य कार्य नहीं रहता। जब जब उनकी कषाय मंद होती है, और खास करके कषाय रस भी मंद होती है, लेशिया जिसको कहते हैं, तब वो ऊपर उठ के आता है। निरोध में से कोई दो इंद्रिय बनता है, कोई तीन इंद्रिय, कोई चार इंद्रिय, कोई पंचेंद्र, कोई संग में पंचेंद्र बन जाता है। तो वहां पर चारित्र का असर ज्ञान पर आया। मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञान की प्रधानता है। ज्ञान जितना विवेक करेगा उतना कषाय रस मंद होएगा। ज्ञान जितना विवेक करेगा उतना मिथ्या तो कमजोर होएगा, दर्शन मोह की शक्ति टूटेगी। इसलिए मुमुक्षुओं को ज्ञानियों ने उपदेश ऐसा दिया कि ज्ञानम एकम साधन, तुम्हारे लिए तो ज्ञान साधन है प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से। उपदेश मुमुक्षु के योग्य है, ज्ञानियों के योग्य है और मुनियों के योग्य है। तीन भेद से उपदेश द्विविधन में चला है। जो अपने प्रयोजन की दृष्टि रखता है, दृष्टिकोण, दृष्टि मैंने दृष्टिकोण रखता है, उसको अपने योग्य जो बात आती है वो ग्रहण कर लेता है, और दूसरी बातों का पारमार्थिक अनुसंधान कैसे बैठता है ऐसा वो बिठा देता है, ऐसे उनकी समझने की कला होती है। इस तरह से उपदेश ग्रहण करने की पद्धति है। उस पद्धति में सामूहिक उपदेश बहुधा चलता है। भगवान तीर्थंकर देव ने भी समूह शरण में सामूहिक समष्टिगत उपदेश दिया। आचार्यों ने आगम लिखे गंधर आदि में, वो भी सारे समाज के अनेक अनेक विविध प्रकार के जीवों की योग्यता को लक्ष्य में रख करके उपदेश दिए। और ज्ञानियों ने भी कभी कभी कुछ ज्ञानियों को व्यक्तिगत उपदेश का भी प्रश्न बनता है, मनियों को भी थोड़ी बनता है। तो व्यक्तिगत उपदेश इनकी सामने वाले जीव की योग्यता को देख करके वो देंगे। अब क्या हुआ कि प्रश्न तो एक ही है लेकिन उत्तर अलग अलग आता है। क्यों? कि प्रश्न करने वाले की योग्यता अनुसार उत्तर मिलेगा। या तो आचार्य के शास्त्र रखने का कुछ न कुछ व्यू पॉइंट होता है, जैसे समय सार स्वभाव दृष्टि कराने के लिए लिखा गया है, इसलिए उसमें श्रद्धा प्रधान कथन अधिक है, ज्ञान प्रधान कथन भी है, लेकिन व्यू पॉइंट श्रद्धा प्रधान का है
बराबर।
जबकि प्रवचन सार में ज्ञान प्रधान कथन है। तब दोनों ग्रंथ में गाथा तो एक ही है, सर्व मगंधम स्पर्शम अलिंगन अलिंगन की गाथा एक है, और दोनों जगह टीकाकार आचार्य भी एक ही है, अमृतचंद्र आचार्य। समय सार में एक एक शब्द में से छह छह बोल निकाल रहे हैं, छह में से 36 निकाले, और बाकी के अलिंगन आदि में और दो तीन करके करीब 40 बोल निकाले। प्रवचन सार में वही गाथा में से सभी शब्दों को छोड़ करके एक अलिंगन में से 20 बोल निकाले। तो शब्द तो शब्द है, आगम आगम है, लेकिन आगम के व्यू पॉइंट होते हैं, इसलिए हमारे अंग पूर्व में भी दृष्टि प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, हेतु प्रवाद, ऐसे अंग होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं कि जिसमें ज्ञान की चर्चा, जिसमें कारण कार्य की चर्चा, जिसमें दृष्टि की चर्चा, ऐसे चले हैं। तो ये सब बातें रही अनेक प्रकार से उपदेश को समझने के। तात्पर्य वो है कि स्वलक्ष्य से अध्ययन करने वाले स्वाध्याय करने वाले जीव को अपने काम की चीज पर ध्यान जाना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, तभी सुधार होगा, वरना कोई सुधार होने का अवकाश नहीं रहेगा। पर ओग संज्ञा से जीव बात सभी बात को समझ लेगा। शोषण ज्ञान में समझने की शक्ति है, उसमें दो प्रकार हैं, एक ओग संज्ञा और एक ओग संज्ञा रहित वास्तविक। ओग संज्ञा में कुछ न कुछ कल्पना बंदी रहती है और वास्तविकता में जो वास्तविकता है वही ग्रहण होती है। तो ज्ञान दो प्रकार का है, एक थियोरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। आगम में जो भी व्याख्यान किया है ये सब थियोरेटिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्ञान लिखा नहीं जाता। प्रैक्टिकल ज्ञान प्रैक्टिस से ही प्राप्त होता है, बिना प्रैक्टिस प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो आगम पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो संज्ञा में रह जाते हैं। श्रीमद जी ने इस विषय पर ये कहा कि देखो, आप आगम पढ़ते हो, आगम में मार्ग जरूर कहा है लेकिन मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में रहा है। मार्ग आपको समझ में आएगा, मर्म समझ में नहीं आएगा। और मर्म जहां तक समझ में नहीं आएगा, मार्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो मार्ग समझ में आएगा वो ओग संज्ञा से समझ में आएगा, ओग संज्ञा बने रहेगी।
तो वेदांत
उसका आत्महित के विषय में कुछ फल नहीं है। आत्महित के विषय में कुछ फल तो है ही नहीं, किंतु पहले वो विषय की जानकारी नहीं थी और आगम पढ़ कर के जानकारी हुई तो मैं जानता हूँ, ऐसा दुष्ट अभिमान हुए बिना रहेगा जो आत्मा को अहित करे, नुकसान का कारण है। इसलिए आगम पढ़ने वाले की जिम्मेदारी बहुत है, ऐसी बात है। इसलिए कहीं से भी पढ़ो, कोई भी बात पढ़ो, हमारे प्रयोजन की दृष्टि सीधी सीधी उसके साथ काम करते रहे, चालू ही चालू काम करते रहे, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। वरना बात ओग संज्ञा में समझ में आएगी और वो नुकसान का कारण प्रायः बनेगी। उसको शास्त्र भाषा में शास्त्रीय अभिनिवेश कहने में आया है। अभिनिवेश मैंने अभिप्राय, गलत अभिप्राय से शास्त्र पढ़ने में आता है और तो अभिनिवेश तगड़ा होता जाता है। जैसे जैसे शास्त्र पढ़ते हैं अभिनिवेश तगड़ा हो जाता है, हालत बनती है। अभी कौन सी का कहाँ दे लेना है, छियासी तो भी प्रश्न उठाया है आचार्य महाराज ने। अब पुनः प्रश्न करता है कि दो क्रियाओं का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि कैसे हैं, उसका समाधान करते हैं। प्रश्नकार ने वो तो स्वीकार कर ही लिया है कि दो क्रिया का अनुभव करने वाला मिथ्या दृष्टि है, लेकिन कैसे वो प्रश्न है। दो क्रिया मैंने जीव जीव के भी परिणाम करे और जीव अजीव पुद्गल के भी परिणाम करें, ऐसे दो पदार्थ की क्रिया एक पदार्थ करें तो मिथ्या दृष्टि है। वो कैसे, उसका समाधान इस व्याख्या में दे रहे हैं। अब देखो ये बात थोड़ी क्रिया करने वाले को कठिन पड़ती है। क्रिया करने वाले संयम पालन करते हैं और संयम देहादिक से पाला जाता है। आत्मा में जो संयम करने का, संयमित रहने का भाव है वो जीव के परिणाम है, और मन वचन काया से जो संयम का परिणमन बनता है वो अजीव के कार्य है। ज्ञानी होते हैं तो अजीव के परिणाम पर अपना अधिकार, स्वामित्व नहीं रखते। अज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि ये मैंने किया। जैसे हम पूजा करते हैं, पूजा में बोलते हैं पूजा, और अष्टद्रव्य की स्वाहा करते हैं ना? तो ये सब पुद्गल के जो परिणाम है वो जीव नहीं करता, पर पूजा के जो भाव है वही जीव करता है। भाषा को भी जीव नहीं करता, और अष्टद्रव्य की जो भी परिणमन की क्रिया होती है, भेद से एक थाली में से दूसरी थाली में जाता है वो जीव नहीं करता। ऐसे भिन्न भिन्न जानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं जाना तो मैंने ये अष्टद्रव्य से 3 दफे 4 दफे 8 दफे इतना इतना अर्घ चढ़ाया, 1008 अर्घ चढ़ाया, इतना अर्घ चढ़ाया, ये सब बात अपने में आ जाएगी। ऐसा जानने मानने अनुभव करने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं। गुरुदेव तो यहां तक कहते थे, इस समोसरण में जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि सर्वज्ञ परमात्मा नहीं करते हैं, यानी दिव्य ध्वनि की आवाज को करने की योग्यता सर्वज्ञ। अब संसार में वो बात व्यवहारी निश्चय हो गया है तो लोग ऐसे कहेंगे कि क्या भगवान दिव्य ध्वनि को नहीं करता है? पंडित जी आपकी बात हमको सुननी भी नहीं है। हम देहरादून गए थे, कितने साल हो गए, 27 साल हो गए, 2026 में गए थे। हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा होगी मई में, और हम गए थे 1-2 महीने के बाद, जुलाई में करीब गए थे देहरादून। तो संसारिक प्रयोजन का काम था, लेकिन वहाँ भी मंदिर जिनमें स्वाध्याय तो सुबह सुबह करते थे, सुबह शाम दोनों वक्त करते थे। तो ऐसे कोई चर्चाई जो गाथा का विषय है कि दो पदार्थ की क्रिया जीव एक पदार्थ नहीं करता है, तो उसमें तो ये हुआ कि भगवान दिव्य ध्वनि को करते नहीं, और दिव्य ध्वनि का उपदेश जीव को सुनने वाले परिणाम को करता नहीं, क्योंकि ये पुद्गल है। दिव्य ध्वनि पुद्गल है और उपदेश देने वाले जीव के परिणाम जो है वो जीव के हैं। तो बोले क्या बोलते हैं पंडित जी, फिर से बोलिए। मैंने कहा दिव्य ध्वनि का उपदेश जीव को कुछ करता नहीं है। दिव्य ध्वनि का उपदेश जीव को कुछ अगर नहीं करता है तो हमको भी आपका उपदेश नहीं सुनना है। उठ के चले गए, उसी वक्त उठ के चले गए, चालू स्वाध्याय में उठ के चले गए। तो ये इतनी रूढ़ मान्यता हो गई है कि जीव अजीव के परिणाम करता है, अजीव जीव के परिणाम करता है। उसमें भी जो कर्म की थ्योरी है जैन दर्शन में, ऐसी थ्योरी तो अन्य दर्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये सर्वज्ञ का ज्ञान का विषय बना है और अन्य दर्शन में सर्वज्ञ है नहीं। तो उसमें उतना विस्तार आया है, जैसे धवल आदि ग्रंथ बने हमारे 31 वॉल्यूम है धवला के, तो उतनी बातें हैं कि जैसे कर्म जीव के परिणाम को करता है और जीव के विकारी परिणाम कर्म को करता है, उसमें भी एक मिथ्यात्व की प्रकृति ऐसी है कि जिसका उदय होवे और जीव भाव में मिथ्या तो भाव नहीं होवे ऐसा बन नहीं सकता, इसलिए इसको पहले उपशम किया जाता है। बाकी की प्रकृति ऐसी है कि उसका उदय होवे और जीव परिणाम नहीं भी करे, जुड़े भी नहीं, लेकिन मिथ्यात्व में ये संभव नहीं है। तो ये सब बात बहुत प्रचलित हुई करणाम योग की, और रूढ़ मान्यता समाज में होगी कि जीव अजीव का परिणाम करता है, अजीव जीव का परिणाम करता है, और सभी संसारियों की मान्यता वो है, और ग्रंथ पढ़ करके भी मान्यता वो रही, क्या फर्क पड़ा। संसार में ऐसा कौन नहीं मानता है मिथ्या दृष्टि संसारी कि जीव अजीव का काम कर नहीं करता है और अजीव जीव का नहीं, सब मानते हैं कि हम एक दूसरे के काम करते हैं। अरे घर में परिवार में हम ऐसी बात करेंगे, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है मेरे काम करने की, मेरा इतना काम आप नहीं संभाल सकते, नहीं कर सकते क्या, इतनी जिम्मेवारी नहीं है आपकी क्या। अरे जीव अजीव का नहीं करे, दूसरे का किसका करे, लेकिन एक रूढ़ मान्यता हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि वो तो मिथ्या दृष्टि है, कैसे कि जम्वादु अत्त भाव कोगल भाव चोगी गोवंती तेजो मिथ्या दिच्छो मिथ्या दिखी दो क्रिया वारिणो होती तो समय साल में तो ये चीज 2000 साल से लिखी हुई है आचार्य ने, गुरुदेव ने उसको प्रसिद्ध किया, क्या ने प्रचलित बनाई इस बात को। कुंदकुंद आचार्य ने लिखा है तो 2000 साल पहले, समाज में वो बात प्रचलित नहीं है। वो तो संसार की जो रूढ़ मान्यता है, ऐसे हम पूजा करते हैं, हम संयम पालते हैं, हमने उपवास किया, हमने इसका त्याग किया, ये सब बात की महत्ता भी उतनी है कि त्यागी के पीछे समाज पागल हो जाती है। भगवान कहते हैं कि कोई जीव दुर्गल परमाण का ग्रहण त्याग कर सकता है, ग्रहण त्याग का भाव कर सकता है, लेकिन ग्रहण त्याग कर सकता नहीं। इस विषय को गुरुदेव ने प्रचलित बनाया तो आज इनके समझने वालों में वो बात बहुत प्रचलित है कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। कोई भी अपना मुख से वो बात तो आसानी से कहेगा कि द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, द्विक्रिया दो क्रिया कर ही नहीं सकता, कोई जीव नहीं कर सकता। गाथा, क्योंकि आत्मा के भाव को और पुद्गल के भाव को दोनों को आत्मा करते हैं ऐसा वे मानते हैं, इसीलिए एक द्रव्य दो क्रियाओं का होना मानने वाले मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है कि वस्तु के स्वरूप में वो परिस्थिति असंभव और अशक्य है। जीव का कार्य क्षेत्र अपनी अवस्था अपनी पर्याय तक है, उसका कार्य क्षेत्र वहां समाप्त होता है, आगे उसका कोई कार्य क्षेत्र नहीं। उस भाव के अनुसार पुद्गल परमाणु की क्रिया हुई तो पुद्गल परमाणु ने की, जीव ने नहीं की। जीव और अजीव का विज्ञान ही ऐसा है कि दोनों में अनंत शक्तियां हैं। ये एटॉमिक एनर्जी हुई है, हिटलर से बाहर आई, वो बाहर तो आई देहागम से बाहर आई, वो लोग हमारे हिंदुस्तान से जर्मन लोग हमारे ग्रंथ ले जाते हैं, आज भी ले जा रहे हैं और कई सालों से ले जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान पर उन लोगों की बहुत नजर है, तो उन्होंने भौतिक विज्ञान को काफी अध्ययन करके उसका डेवलपमेंट किया, जबकि हमारी नजर आध्यात्मिक विज्ञान पर है, इसलिए हम उस विषय को ज्यादा स्पष्ट नहीं करते। तो परमाणु में अनंत शक्ति है, परमाणु में जो अनंत शक्ति है वो बात जैन दर्शन में अनादि से प्रसिद्ध है। जीव में भी अनंत शक्ति है और सभी शक्तियां निरंतर प्रवृत्तिशील है। एक भी शक्ति एक समय के लिए बिना कार्य किए हुए रहती नहीं, चाहे उसका कार्य विकृत हो या अविकृत हो, वो बात की बात है। जब ऐसे तो जीव को खुश करने के लिए समर्थ नहीं, जानता भी नहीं और कर सकता भी नहीं है, ऐसी एक वस्तु व्यवस्था है। इस वस्तु व्यवस्था से बोध मिलता है, वस्तु व्यवस्था तो वस्तु व्यवस्था है, लेकिन हमें क्या बोध लेना है? कि हमें यह बोध लेना है कि हमें अन्य पदार्थ के कार्य करने का राग और द्वेष होता है, तो हमारी विपरीत मान्यता से होता है कि हम कर सकते हैं। अगर इस मान्यता को हम छोड़ दें वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान के आधार से, तो हमारे राग द्वेष मिट जाएंगे। राग द्वेष मिटने से हमारे दुख मिट जाएंगे और राग द्वेष चालू रहने से हमारे दुख बढ़ते जाएंगे। प्रयोजन हमें सुख दुख का है। अगर हमें सुखी होना है तो सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार जो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु विज्ञान है, उनको समझे और उसी अनुसार हमारे तथा ज्ञान को ठीक करें, हमारी विपरीतता दूर करें, तो हमारे दुख मिट जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। कभी कभी गुरुदेव तो अपने प्रवचन का प्रारंभ ही यहाँ से करते थे कि जिसको सुखी होना है इसके लिए यह बात है, ऐसा कहते थे। सुखी होना माने कि गाड़ी बंगला मिल जाए, इसके लिए बात वो है, ऐसी बात नहीं। जिसको सभी प्रकार की आकुलताएं मिल जाए और निराकुल दशा प्राप्त हो जाए, इसके लिए वो बात है। इस विषय में जिसको दिलचस्पी है, जिज्ञासा है, उसको उस विषय की रुचि बनेगी और वो रुचि आगे जा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगी। तो बात तो प्रयोजन पर आती है आगे जा करके, कि हमको सही रूप से सुखी होना है या नहीं होना है, या हमने सुख की मान्यता और अभिप्राय बना रखे हैं उसी प्रकार से सुखी होना है, हमको किसी प्रकार से सुखी होना है, उतनी सी बात है। टीका निश्चय से द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा के परिणाम को और पुद्गल के परिणाम को आत्मा स्वयं करता है, इसलिए वे मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा सिद्धांत है। क्योंकि ये वस्तु स्थिति में है ही नहीं। अगर एक परमाणु पर जीव का अधिकार होता
जी,
तो कोई मनुष्य अपने एक बाल को सफेद होने नहीं देता। हाँ, और कोई डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता, वैद्य हकीम डॉक्टर बीमार नहीं पड़ता। और कोई ज्योतिष दुखी नहीं होता, ज्योतिषी ज्योतिषी खुद दुखी होते हैं। सारे गांव की कुंडलियां निकालते हैं कि तुमको ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन तुम कुंडलियां क्यों निकालते हो, इतना परिश्रम तुमको क्यों करना पड़ता है, हा? दुखी है इसलिए। तो ये दुख है वो विपरीत मान्यता का है और विपरीत ज्ञान का है, विपरीत समझदारी का है। सही समझदारी में दुख नहीं है। सिद्धांत वैसा है कि कोई भी जीव दुखी होता है वो अज्ञान के कारण से। ज्ञान से दुख होने का कभी बनता नहीं। ज्ञान सुख के साथ अभेद है, सुख और ज्ञान अलग अलग रहता है। सही ज्ञान और सुख अलग अलग रह नहीं सकता, ये वस्तु स्थिति है, तो विज्ञान है। भगवान ने धर्म की परिभाषा वैज्ञानिक भाषा में व्याख्या दी है, वत्थु सहाओ धर्मो। धर्म के विषय में ऐसा नहीं कहा कि कोई माला फेरेगा उसको धर्म है, कोई पूजा करेगा उसको धर्म है, कोई दान देगा उसको धर्म है, कोई ग्रंथ पढ़ेगा उसको धर्म है, ऐसा कुछ नहीं कहा। धर्म क्या चीज है, वस्तु का स्वभाव वही धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है, एक श्रद्धा ज्ञान चारित्र आनंद सुख शांति प्रभुत्व आदि वस्तु का स्वभाव है। ऐसा ही परिणमन प्रकट हो वही उसका धर्म है, और जिस प्रकार से प्रकट हो वही कार्य पद्धति है, बस। बाकी किसी को भी धर्म का नाम नहीं दिया। कहने का तात्पर्य वो है कि जैन दर्शन में धर्म है, धर्म कोई रूढ़ी नहीं, रिवाज नहीं, कोई ऑर्थोडॉक्सी नहीं, ऑर्थोडॉक्सी मैंने अंधश्रद्धा नहीं कि आगे से चली आती है वैसा करते रहो, ऐसा नहीं। हमको जो बात हमारे आत्मकल्याण की, हमारे सुख दुख की कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति से, उसका रिसर्च हमको करना पड़ेगा। उन्होंने तो रिसर्च करके रखी है, फिर भी हमारे लिए इसका रिसर्च हमको करना पड़ेगा, तभी हमको प्राप्ति होगी, वरना शांति की प्राप्ति नहीं होगी। एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्यों के परिणाम किए गए प्रतिभाषित न हो, देखो भावनात्मक क्रिया है। किसी भी जीव को आचार्य भावना भाते हैं, किसी भी जीव को एक द्रव्य के द्वारा दो द्रव्य के परिणाम किए गए हो ऐसा अनुभव, ऐसा लगना, ऐसा प्रतिभाषित होना न हो, ऐसे हम भावना भाते हैं। देखो प्रतिभाषित शब्द लिया है, प्रतिभास मैंने लगना, अनुभव होना, फील होना, कि किसी जीव को ऐसा मत हो। मतलब क्या हुआ कि जिसको ऐसा अनुभव होता है, मैं जीव हूँ और जीव और पुद्गल दोनों का कार्य करता हूँ, तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए किसी को दुख न हो ऐसी भावना रखते हैं। क्या जगत में किसी भी प्राणी को दुख नहीं होना, ये हमारी भावना है। सभी ये सन्मार्ग पर आ जा रहे, तीर्थंकरों ने ये भावना भाई। जैसे कल कहा था अध्यात्म का विषय वस्तु के स्वरूप के सिद्धांत को उल्लंघन करके अपना स्थान को प्राप्त करते हैं, वैसे भावनाएं भी ऐसे ही काम करती हैं। भावना भी वस्तु स्थिति को गिनती नहीं, कैसे बहुत बड़ा दृष्टांत है ये तीर्थंकर देव का, कि उनको बहुत भावना रही, सभी तीर्थंकरों को बहुत भावना रही कि संसार के सभी जीव राशि इस तन्मार्ग को प्राप्त हो जाए। लेकिन उनके ज्ञान में वो बात थी कि मैं मेरा कर सकता हूँ, किसी और का कर सकता
नहीं,
नहीं। तो ये रही बात सिद्धांत की, पर वो रही बात भावना की। वस्तु स्थिति का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, भावना बहुत हुई, उस भावना के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ, तेरहवें गुण स्थान आने पर उदय भी हुआ, दिव्य ध्वनि भी खीरी, खुद ने नहीं किया, अपने आप दिव्य ध्वनि खीरी, जो भी पात्र जीव थे वो सन्मार्ग को प्राप्त किया। जिस कुछेक ने सन्मार्ग को प्राप्त किया था वो मुनि दशा को प्राप्त किया, कुछेक मुनि दशा को प्राप्त हुए थे उसने केवल ज्ञान को भी प्राप्त किया। ये सब कुछ हुआ, फिर भी ये संसार है वैसा का वैसा ही चल रहा है, कुछ नहीं कर सके और कर सकते भी
नहीं।
फिर भी भावना देखती नहीं, भावना तो भावना के प्रभाव में बहती रहती है और वस्तु का स्वरूप अपनी मर्यादा में ही कार्य करता है, इसका उल्लंघन हो सकता नहीं है। दृष्टांत देते हैं यहाँ कि जैसे कुम्हार घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल अपने इच्छा आदि रूप हस्तादि की क्रिया रूप व्यापार परिणाम को जो कि अपने से अभिन्न है और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है उसे करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी वह कुमार अपने व्यापार के अनुरूप मिट्टी के घट परिणाम को जो कि मिट्टी से अभिन्न है और मिट्टी से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है उसे करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। क्या है, ज्ञानी की नजरों में जिसको वस्तु स्थिति का ज्ञान है उसको कुमार और घड़ा का दृष्टांत देकर कहते हैं कि हमको तो ऐसा देखता है, दिखने में आता है कि कुमार अपने भाव को करता है, इच्छा हुई कि घड़ा बनाओ, इच्छा हुई कि दूसरा बर्तन बनाओ पानी पीने का, तो बंदे ने कुंजा बोलते क्या कुंजा, हाँ जो इच्छा हुई बस उतना ही उसका कार्य है, मिट्टी पर कुम्हार का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात गले उतरना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि जैसे इसकी इच्छा है वैसा घड़ा या दूसरा बर्तन बन जाता है और अच्छी तरह बनाता है, इतना अच्छा शेप दे सकता है कि अपने को लगे हाँ ऐसा कर सकता है, ज्ञानी की नज़र में वो कर सकता
नहीं,
क्योंकि वो अपने इच्छा के साथ अभिन्नता रखता है। कुमार का जीव अपनी इच्छा के साथ अभिन्नता रखता है और मिट्टी के पर्याय जो घड़ाती हुई वो मिट्टी से अभिन्नता रखती है और आपस में दोनों से भिन्नता रखती है, ये वस्तु स्थिति है। और अगर ये बात गले नहीं उतरे तो अनुभव कर लेना कि सारे दिन में हमको सैकड़ों इच्छाएं होती है, कितना कार्य हम कर सकते हैं, सैकड़ों में से कितना होता है हमारे साथ, और इच्छा के अनुकूल पर पदार्थ पर कार्य करने का हमारा अधिकार होता तो हम बाजार में हमारे कंपटीशन वाले को कोई काम करने देते
नहीं,
एक भी काम नहीं करने देते। क्या हुआ, हमारा बिजनेस है भावनगर में एक टेंट हाउस का। तो भावनगर में आज से 25 साल पहले 27 साल पहले एक ही आदमी का मोनोपोलाइज बिजनेस था। गाँव की आबादी बढ़ती जाती है सिटी की, एक आदमी पहुंचता नहीं है, अच्छे अच्छे आदमी को गरज करनी पड़ती है कि बेटी का ब्याह है भाई साहब हमको इतना भेजना, लोग नहीं इतना ही मिलेगा हमारे को, दो बहुत को भी लेना है, कभी नहीं भी भेजे गाली भी दे सब सुन लेना पड़ता। वो अनुभव वहाँ को प्रतिष्ठा के पहले मंदिर जी के शिलान्यास किया ने, तो हमारे मकान पे कमान लगाने की थी, हमारा जो मकान है वहाँ दरवाजे पे गेट पे कमान लगाने की थी। तो कमान वो देने रहा था आदमी भेजा, एक दफे दो दफे तीन दफे, व्यस्त है हमारा टाइम नहीं है, हमारे व्यस्त हैं भेजेंगे आएगा आएगा। आखिर में रुपये पढ़ाने वाले थे हमारे यहाँ आ करने के लिए, दो घंटे की बात थी कमान नहीं आ रही थी, स्वागत में कमान तो चाहिए ना बेटे। फिर मैं हमारी गाड़ी भेजी, फिर तुम्हारे सामान हमारी गाड़ी में रख दो हम ले जाएंगे और मजदूर को साथ में भेजो कमान लगाने, इतनी गर्व की बात है। इनके एक दो आदमी हमारे पास आ गए ये बिजनेस कर रहा, हमने इसके सामने दुकान लगा दी, इसके सामने मतलब हमारे कुछ दूसरे एरिया में, वो आदमी तो बहुत हमारे पे नाराज हो गया कि कॉम्पिटिशन होगी, मेरी मोनोपोली है टूट गई, पर हम भी काम करने में थोड़े समर्थ थे कमजोर नहीं थे। तो उसने क्या किया, हमारी ऑफिस के सामने एक ऑफिस ले ली, कोई भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को जाता निकलता बाहर उसको बुला लेता कि आपने कितना कॉन्ट्रैक्ट किया, कभी इतना किया, किस भाव से किया, किस भाव से किया, तो लेके 50% डिस्काउंट, तुम्हारा टोटल 2000 का काम है 1000 में हम करते हैं, क्योंकि देने का तो कुछ है नहीं, चीज तो किराए पर वापस आ जाती है। उसका मतलब ये था कि एक काम भी हमको नहीं करना देना करने देना, ये अभिप्राय तो सबों का होता है कॉम्पिटिशन में, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई तो खत्म होने लगा कॉम्पिटिशन में, वो खत्म होने लगा। ऐसा बना कि 2 साल तक हमको एक पैसा कमाई का मिला नहीं, स्टाफ के खर्चे का हो गया था, लेकिन दूसरे दूसरे बिजनेस थे इसलिए हमारा तो चलता था, लेकिन वो 2 साल में खत्म हो गया कॉम्पिटिशन में। फिर बारी हमारी आ गई, बात वो होता है किसी की चलती नहीं, चलती तो कोई किसी को सड़क पर चलने नहीं देते, ये हालत हो जाती है। अमेरिका इतना समर्थ देश है और यूरोप के 27 देश ने उसका सहकार ऑपरेशन दिया है, अपने हथियार दिए, अपने लश्कर दिए, सब कुछ दिए। ईरान इतना छोटा सा बच्चा है इसके पास, 5 महीने तक वो हमला नहीं कर सका, घेर लिया चारों ओर से, हमला नहीं कर सका 5 महीने तक, उसको सोचना पड़ा कि करें या नहीं करें, करें या नहीं करें, क्योंकि इसके पास वो मच्छर है, तो सिंह है और वो मच्छर है, क्यों कि उसको अपने को सही सलामत रहना है, अपने को मर के मारना नहीं है जिंदा लेकर के मारना है, पहले अपने सलामती को देखता है, कुछ भी करे। वितराग जीवेश्वर देव कहते हैं कि एक परमाणु का कार्य कोई एक जीव कर सकता नहीं है, अगर मानता है जानता है तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, दुखी होने वाला है, सुखी कभी होगा नहीं। दृष्टांत तो बड़ी बड़ी महासत्ता से लेकर के एक छोटा व्यापार तक का भी हो, हमारे अधिकार की कोई बात नहीं है, हमारे अभिप्राय में तो वो है कि सारे दुनिया की संपत्ति हमारे घर पे आ जाए, है कि नहीं अभिप्राय में, किसी को कम पड़ता है तो कम पड़ नहीं पड़ता है, सबको कम ही पड़ता है, जितना भी मिले कम पड़ता है, जितना भी मिले कम पड़ता है। क्यों? कि जीव को स्वभाव की अनंतता है, तो उसको जो प्राप्ति करनी है वो भी अनंत है। हमारे शास्त्रों में वो बात वहां तक है कि एक जीव की इच्छा आकाश समान है, बहुत विशाल है, जिस आकाश का जैसे कोई हद नहीं, ऐसे एक जीव की इच्छा आकाश के समान है, और तीन दिन का लोक की संपत्ति इस इच्छा के आकाश में राई के दाने के बराबर है। अब अनंत जीव है संसार में, और सबके अनंत इच्छाएं हैं, लड़ाई नहीं होगी तो होगा क्या बताइए? चीज कम है और लेने वाले ज्यादा हैं, लड़ाई नहीं होगी तो होगा क्या? कि तकरार ही होगी, लड़ाई ही होगी, और क्लेश ही होगा और दुख ही होगा, और कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इस संसार में एक परिवार में से लेकर के महासत्ता तक विग्रह, तकरार, लड़ाई, फ्रिक्शन चलता ही रहता है। अगर इस संसार के सभी दुखों से छूटना हो तो जिनेश्वर के मार्ग पर, जिन मार्ग पर चले जाना, तो सुखी हो गए संपूर्ण, आप भी सुखी हो जाएंगे, उतनी सी बात है। इसके लिए वो उपदेश है कि कुमार घड़ा को बनाता है ऐसा अनुभव नहीं होता, आचार्य महाराज को तो नहीं होता, संसारियों को होता है कि कुमार घड़ा बनाता है। इस प्रकार आत्मा भी अज्ञान के कारण उद्गल कर्म रूप परिणाम के अनुकूल अपने परिणाम को, जो कि अपने से अभिन्न है और अपने से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित हो, परंतु उद्गल के परिणाम को करने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी अपने परिणाम के अनुरूप उद्गल के परिणाम को, जो कि उद्गल से अभिन्न है और उद्गल से अभिन्न परिणति मात्र क्रिया से किया जाता है, उसे करता हुआ प्रतिभाषित न हो। आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि आप भी ऐसा अनुभव करो जैसा हम करते हैं, प्रतिभाषित होना मैंने अनुभव करो, कि जीव भले ही कर्म बांधे तो भी जीव का भाव का ही वो करता है, उज्जल कर रखा नहीं, ऐसा अनुभव करो। जड़ के परिणाम को आत्मा करता है ऐसा अनुभव कभी नहीं करो, ऐसी भावना को रखते हुए एक कथा की टीका बनाई है।